ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने खाना पकाने वाली गैस की सहज आपूर्ति, कृषि उर्वरक तथा उपभोग्य वस्तुओं की कृत्रिम कमी रोकने के लिए प्रभावी बाजार निगरानी की मांग करते हुए सरकार का कराया ध्यान आकर्षण, आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी का कथन, रूपंदेही की रोहिणी गांव पालिका में 273 भूमिहीन परिवारों को लाल पुर्जा वितरित, और भारत के असम में भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कम से कम 97 लोगों की हुई मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में चार विधेयक पेश किए गए। कानून मंत्री सुविता गौतम ने संवैधानिक निकायों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक सेवा शर्त एवं सुविधा प्रथम संशोधन विधेयक 2083, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने पासपोर्ट संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2083, उद्योग मंत्री गौरी कुमारी ने खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 और महिला बाल बालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने मानव तस्करी तथा ओसार पसार नियंत्रण प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पेश किया। बैठक में सांसदों ने प्राकृतिक आपदा, पहाड़ी जिलों में सड़क अवरोध, रसोई गैस और रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति, सर्पदंश उपचार, सहकारी पीड़ितों को राहत, दूरसंचार सेवा सुधार और अन्य जन सरोकार के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक की शुरुआत में विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सीमा संबंधी बयान को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध किया। सभामुख ने इस विषय पर सरकार से जवाब देने का निर्देश दिया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 25 कृति सोमवार को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने कहा है कि पहले की तरह ही एलपीजी का आयात जारी है, लेकिन वितरण प्रणाली में बदलाव के कारण कुछ असंतुलन देखा गया है। प्रतिनिधि सभा में सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि श्रावण महीने से भरे हुए सिलेंडरों के वितरण की व्यवस्था शुरू होने के कारण कुछ अस्थायी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मंत्री यादव ने बताया कि देश की आंतरिक मांग के अनुरूप गैस का आयात हो रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ अधिक मात्रा में गैस की मांग किए जाने से बाजार में दबाव बढ़ा है। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि नेपाल में वर्तमान में 58 एलपीजी गैस उद्योग संचालित हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 10,166 मीट्रिक टन है। साथ ही बाजार में लगभग 1.75 करोड़ गैस सिलेंडरों को भरने की क्षमता उपलब्ध है और सरकार आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयासरत है। रूपंदेही जिले के रोहिणी गांवपालिका में 273 भूमिहीन परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी लाल पुर्जा वितरित किए गए। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि अव्यवस्थित बसोबास और भूमिहीनों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को मुख्य जिलाधिकारी के साथ समन्वय कर शेष भूमिहीनों की समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। सूचना तथा संचार मंत्रालय ने मीडिया काउंसिल विधेयक 2083 के मसौदे पर संचार क्षेत्र के हितधारकों के साथ चर्चा कर सुझाव एकत्र करना शुरू किया है। मंत्रालय में आयोजित बैठक में विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों और प्रतिनिधियों, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउंसिल तथा पत्रकारिता से जुड़े स्वतंत्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में विधेयक में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों, वर्तमान मीडिया क्षेत्र की चुनौतियों और नियामकीय व्यवस्था पर विस्तृत सुझाव लिए गए। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक प्रभावी, व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख विधेयक तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और दूरसंचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि ये निर्देश मोबाइल सेवा गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग, लाइसेंस की शर्तों के पालन और उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है या सेवा की गुणवत्ता कमजोर है, उनकी पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर नेटवर्क विस्तार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी, नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ नै हो जी, नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि देश की विदेश नीति का मुख्य केंद्र आर्थिक कूटनीति है। ललितपुर में आयोजित बहुध्रुवीय विश्व में चीन और दक्षिण एशिया विकसित क्षेत्रीय व्यवस्था में चीन भारत नेपाल त्रिपक्षीय संबंध विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक कूटनीति का उद्देश्य नेपाली नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा व्यापार, निवेश, रोजगार, उद्यमिता, पर्यटन, प्रविधि, नवाचार और सतत विकास के अवसरों का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि नेपाल चीन और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक, व्यापारिक और जनस्तरीय सहयोग बढ़ाने में एक गतिशील सेतु की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ संप्रभु समानता, पारस्परिक सम्मान, साझा हितों और एक दूसरे की संवेदनशीलताओं को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने हर साल बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन विस्तार को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। प्रतिनिधि सभा की पूर्वाधार विकास समिति की बैठक में ऊर्जा मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा कि पुराने ट्रांसमिशन नेटवर्क के कारण मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरकार नई विद्युत परियोजनाएं शुरू नहीं करेगी, बल्कि अधूरी और जर्जर परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कर्णाली और सुदूर पश्चिम के बिजली विहीन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बैठक में सांसदों ने जर्जर बिजली के तारों, बढ़ते लोड शेडिंग के निराकरण और समन्वित पूर्वाधार योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसपी नेपाल की नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बसन्यात ने सिंहदरबार स्थित पीएसपी नेपाल कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। मौके पर पीएसपी नेपाल की संचालक समिति सदस्य सोबिता रिसाल, कार्यवाहक प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत आरती चटौत सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद बसन्यात ने सुशासन, पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति जवाबदेह सार्वजनिक प्रसारण को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यवाहक प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत आरती चटौत ने कहा कि संस्थान की आंतरिक चुनौतियों का समाधान करते हुए पीएसपी नेपाल राज्य और नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में भीषण बाढ़ और लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है, जबकि 15 जिलों के 1,68,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 481 से ज्यादा गांव अब भी जलमग्न हैं और हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सरकार ने बताया है कि बाढ़ का कारण ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा है, न कि भूटान के बांधों से पानी का छोड़ा जाना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की है, जबकि झारखंड सरकार ने राहत कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने खाना पकाने वाली गैस की सहज आपूर्ति, कृषि उर्वरक तथा उपभोग्य वस्तुओं की कृत्रिम कमी रोकने के लिए प्रभावी बाजार निगरानी की मांग करते हुए सरकार का कराया ध्यान आकर्षण, आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी का कथन, रूपंदेही की रोहिणी गांव पालिका में 273 भूमिहीन परिवारों को लाल पुर्जा वितरित और भारत के असम में भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कम से कम 97 लोगों की हुई मृत्यु। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।